सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजणियवेण उवहि समुत्तीर्णये जिणेन मिं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनियोग के बाद अभी चूलिका चल रही है। हम पृष्ठ संख्या 118 पर आ गए हैं। ये अनुभाग स्थानों की बात यहाँ चल रही है। अब यहाँ प्रथम जघन्य स्थान उन्होंने बताया था कि जघन्य स्थान कहाँ होता है, मिनिमम पॉसिबल अनुभाग कहाँ बनता है, तो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में। अब उसके बाद द्विचरम अनुभाग स्थान की बात चलेगी अपने 118 पृष्ठ पर, जो नया पैराग्राफ है वहां से पढ़ेंगे। देखो, इस जघन्य स्थान को सब जीवों से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा गुणित करने पर, जघन्य स्थान में जो अनुभाग है उससे जो सूक्ष्म सांप्राय के ही द्विचरण समय में जो अनुभाग बंधा था वो अनंत गुणा है, तो द्वितीय स्थान है वो अनंत गुणा है। तो कहते हैं वो अनंत का प्रमाण कितना है, तो जीवों से अनंत गुणे, ये अनंत का प्रमाण है। तो कहते हैं जघन्य स्थान को सब जीवों से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा गुणित करने पर सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरम समय में बांधे गए द्वितीय अनुभाग स्थान का प्रमाण होता है। ये द्वितीय अनुभाग स्थान कहाँ पर होता है वो भी बता दिया, उसका स्वामी भी बता दिया और उसका अनुभाग भी बता दिया। इसमें से जघन्य स्थान को घटाकर एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है। दोनों में डिफरेंस कितना है, अभी 100 से 1000 10 गुना है कहा, 10 से गुना करने पर 1000 आया, परंतु उसमें डिफरेंस कितना है, तो 1000 में से 100 कम करें, 100 कम करें ना, 100 से हमने 1000 कितने गुना, तो 10 गुना देखा। दोनों में अंतर कितना है, तो 101 से लेकर वो 999 तक जो है उसका अंतर है। तो दोनों में से देखो, ये द्वितीय स्थान में से जघन्य को घटाना और उसमें से एक कम कर देना, ये अंतर कहलाएगा। वृद्धि स्पर्ध, अभी वृद्धिस्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर, वृद्धिस्पर्धक यानी जितने स्पर्धक अभी बढ़ गई है उसका विरलन कर, वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड कर देने पर एक एक अंक के प्रति वृद्धिस्पर्धकों का प्रमाण होता है। ये स्पर्धक वृद्धियां है, क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाने वाला है। जघन्य स्थान में जितने स्पर्धक थे, अभी अनुभाग बढ़ गया है तो वहां स्पर्धकों की संख्या भी बढ़ेगी, तो जघन्य स्थान में जो सबसे ऊपर का स्पर्धक था उसके ऊपर और स्पर्धक बढ़ेंगे, तो उसको जितने नंबर ऑफ स्पर्धक बढ़े उसको स्पर्धक शलाका कहा, तो उसको वृद्धि स्पर्धक शलाका कहा। तो हमने देखा अनुभाग कितना बढ़ा है, तो दोनों में जो अंतर है उस उतना बढ़ा है, उसको वृद्धिंगत अनुभाग कहा, इतना अनुभाग बढ़ा है। और वो अनुभाग कितने स्पर्धकों में बढ़ा है, तो जितना अनुभाग बढ़ा है उसको नंबर ऑफ स्पर्धक बढ़े उससे भाग देंगे, हाँ, एक एक स्पर्धक का प्रमाण आएगा, पर स्पर्धक कितना अनुभाग है उसका प्रमाण आएगा, वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण आता है। ये स्पर्धक वृद्धियां हैं क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाना वाला है। ये स्पर्धक वृद्धियां, इतने नंबर ऑफ स्पर्धक वहां बढ़े गए। शंका, इनकी स्पर्धक संज्ञा कैसे है? समाधान, कारण कि चिर अनुभाग को छोड़कर युगपत वृद्धि को प्राप्त होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धक पना पाया जाता है। यानी अभी जो जघन्य स्थान था उसमें से एकदम बढ़ोतरी होगी, नहीं इतना अनंत गुणा बढ़ गया अनुभाग, तो युगपत वृद्धि हो गई, क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धकता। तो हमने देखा था स्पर्धक भी दो गुना, तीन गुना, चार गुना इस तरह से होता है, तो जितने गुना होंगे उतने वहां स्पर्धक कहलाएंगे। जैसे हमने देखा 100 से 1000 तक 10 गुना कहेंगे, तो वहां 10 स्पर्धक को ऐसा कहेंगे, 100 से 200 हो जाएंगे तो हम दूसरा स्पर्धक कहेंगे, तीन गुना होता है तो तीसरा स्पर्धक कहेंगे, इस प्रकार। चिर अनुभाग है ना, हाँ, अंतिम चिर ने कायम रहने वाला वो चिर कहलाता है, चिर अनुभाग। यानी अभी तो पहले जो वहां का अनुभाग था उससे कितना बढ़ गया है उसकी बात है। हाँ, जघन्य के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं ना, जघन्य में जितना अनुभाग था उसके कंपैरिजन में आगे की बात चल रही है। यहाँ प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है। देखो ऊपर क्या लिखा था हमने, पहले तो वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन किया था और जितना अनुभाग बढ़ा था उसको सबके ऊपर दे दिया था, तो एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण आएगा। तो वो जघन्य में जो अनुभाग था मैक्सिमम उसके ऊपर एक एक बढ़ेगा, तो वही बात कहते हैं। ये सेकंड लाइन, प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को, ऊपर अभी हमने विरलन करके वो राशि दी थी ना अनुभाग की, उसमें जो राशि आई थी उसको जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर, अंतिम स्पर्धक में जितना अनुभाग था मैक्सिमम उसके ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है। वो प्रथम स्पर्धक की वैल्यू आई वहां पर, एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है। वृद्धि करना, उसको वृद्धि हुआ है ना, वृद्धि करना। एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और उपरीम वर्गणाओं का अंतर होता है। अभी जो अभी नया जो स्पर्धक अभी देखा, तो नीचे और ऊपर का अंतर कितना हो गया, तो वो उतने इस स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं होती है उतना उसमें अंतर हो गया। पुनः द्वितीय स्पर्धक को ग्रहण कर, देखो हाँ, उसमें अंतर कितना है, तो अभी का जो स्पर्धक की वर्गणा है उतना है, ये नीचे के स्पर्धक यहाँ तक इसका मैक्सिमम, नीचे वाला मैक्सिमम, अब इसके ऊपर अभी ये नया स्पर्धक बना, ये नए स्पर्धक हम मान लेते चार वाला, ये चार वर्गणा वाला नया स्पर्धक बना, और उसके ऊपर और उसके ऊपर के स्पर्धक हो गए, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, जगन्य स्थान की उत्कृष्ट स्पर्धक और ऊपर की जगन्य स्पर्धक है ना, उसकी वर्गना, उसमें अंतर कितना हुआ? तो अभी जो पहला स्पर्धक है उसमें जितनी वर्गनाएं होगी उतना अंतर होगा ना उसमें। देखो इसको फिर पढ़ते हैं। हाँ अच्छा, स्लोली जाएंगे। पहले में हम इस स्थान का अंतर भी पहले बताया था, वो तो हमने देखा था। अंतर प्ररूपणा की बात चल रही है 114 पेज से, जरा पहले रेफरेंस देखते ना। एक एक स्थान का अंतर कितना है अभी 114 पृष्ठ पर?
हाँ 201 सूत्र।
उसके भी पहले वहां तो स्थानों का अंतर बताया बराबर, अब उसके पहले स्थान किसको कहना? फिर चलो 112 पृष्ठ पर, उसमें छठी लाइन, एक जीव में अवस्थित कर्म परमाणुओं में जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित कर्म परमाणु है वही स्थान है उत्कृष्ट। अभी जो द्वितीय स्थान होगा, तो पहला जो हमने जघन्य जो देखा था अनुभाग बंद करने वाला सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय वाला, वहां जो उत्कृष्ट अनुभाग था किसी परमाणु में, और अभी उसके द्विचरम समय में अनुभाग बंद हुआ है वहां का अनुभाग है, उसमें भी उत्कृष्ट जो होगा उसको लेना। हाँ तो ये दो स्थान हुए और दो स्थानों का अंतर उसमें जो डिफरेंस है प्लस वन, हाँ उत्कृष्ट और उत्कृष्ट के बीच वाला, उसी को स्थान कह दिया उन्होंने, दोनों के उत्कृष्ट लेने, उत्कृष्ट को ही स्थान संज्ञा कह दिए। अब दो स्थानों का अंतर यानी अभी जो अनुभाग का जो डिफरेंस है प्लस वन वो उसमें अंतर होगा, तो वो अंतर कितना है? तो अभी हमने देखा जघन्य स्थान से द्विचरम वाला जो है अजघन्य वाला, तो उसमें वो जीवन से अनंत गुणा इतना नहीं, अभी उसकी बात मत करो, अभी तो स्थान किसको कहना और अंतर किसको कहना इतनी बात बताई, अब हम फिर पढ़ेंगे आगे। बीच में वो बहुत सारे उन्होंने शंका समाधान भी किए थे। अभी हम आते हैं 118 पृष्ठ पर। अभी जहां से हमने पढ़ा जघन्य स्थान को, जघन्य स्थान ने उस मैक्सिमम अनुभाग वाला परमाणु, उससे द्वितीय अनुभाग स्थान अभी जो है वो कब है होता है? तो सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरम समय में, उल्टा आए रहे हम, वहां होता है। वो तो अनंत परमाणु बांधता है परंतु उसमें मैक्सिमम अनुभाग वाला परमाणु है उसको लेना है। जैसे हम स्थिति कितनी बंधी है तो मैक्सिमम पॉसिबल उसको लेते हैं, हर एक परमाणु अलग अलग स्थिति पड़ती है परंतु जितनी मैक्सिमम पड़ती है उसको हम काउंट करते हैं। स्थिति का स्थान वैसे ही हम देखते हैं ना, कभी 70 कोड़ाकोड़ी की बांधी, कभी एक समय कम बांधी, उसको हम स्थिति के स्थान कहते हैं। वैसे अनुभाग के स्थान भी मैक्सिमम पॉसिबल अनुभाग जिस परमाणु होगा तो उसको हम उसका अनुभाग स्थान कहेंगे। तो द्विचरम समय में जो अनुभाग बांधा है वो कितना है? तो हमने देखा तो वो गुणकार कितना है, गुणकार के रूप में है, तो गुणकार है जीवन से अनंत गुणा वाला। यहां तक समझे में? यानी दोनों का अंतर कैसा है? तो अभी जो हमने देखा था नया वाला उसमें से पुराना वाला माइनस कर देना और घटाकर फिर और एक कम कर दो, तो वो दोनों का अंतर हो जाता है। अब इसमें अभी जो जितना अनुभाग बढ़ा है उसमें उस स्पर्धकों की भाषा में बोल रहे हैं, एक स्पर्धक बढ़ा, दो स्पर्धक बढ़े, स्पर्धक बढ़े यानी अभी वो वर्ग वर्गणा की बात नहीं, वो तो स्पर्धक यानी वो अनुभाग की अपेक्षा ही बात करनी है। अनुभाग अभी इतना बढ़ा, कितना 10 गुना बढ़ा, तो उसमें हम 10 स्पर्धक हुए ऐसा कहेंगे, क्योंकि एक स्पर्धक डबल होता है तो एक स्पर्धक, 3 गुना होता है 2 स्पर्धक, इस तरह से और आगे तीसरा स्पर्धक होता है ना, 3 गुना तीसरा स्पर्धक। तो यहाँ बताया है, देखो ये तीसरी लाइन में, वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर, वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड कर देने पर एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है। ये स्पर्धक वृद्धियां है क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाने वाला है। जघन्य स्थान में जो अंतिम स्पर्धक है उसके ऊपर इतने स्पर्धक होंगे। यहाँ पर मान लेते जघन्य स्थान में 10 स्पर्धक थे और अभी और 10 हो गए, यहाँ तो 20 हो जाएंगे ना, एक्स्ट्रा 10 बढ़ जाएंगे। तो कहते इनकी स्पर्धक संज्ञा कैसे, इसको स्पर्धक क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो हमने अनुभाग कितना बड़ा उसको देखा है। तो उसको कहते हैं चिरानुभाग को छोड़कर, यानी अभी जघन्य स्थान में जितना मैक्सिमम था उसको छोड़कर, युगपत वृद्धि को प्राप्त होकर, क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग, ये क्रम से वृद्धि होती है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, उसी को स्पर्धक कहा है। अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धक पना पाया जाता है, यानी उसी को स्पर्धक कहने में आता है। यहाँ प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है। हमने देखा ना एक एक अंक के प्रति कितना बढ़ा, पर स्पर्धक कितना कितना हुआ, तो उसको अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखेंगे तो ये एक स्पर्धक हुआ, 2 स्पर्धक हुआ, ऐसा कहेंगे हम। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, अब इसके आगे थोड़ा कन्फ्यूजन था। एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है। अच्छा हाँ, स्थान में जो अनुभाग है ना उसी को स्पर्धक कहा है, यानी एक परमाणु में कितना बढ़ा, हमने मैक्सिमम पॉसिबल कितना बढ़ा उसको देखा था, तो वो कितने गुना हुआ तो उतने स्पर्धक बढ़े। अभी अभी हमने देखा था ना 100 से 1000 हुए, 100 अनुभाग था तो 1000 हुआ। अभी 100 से भी पहले ऐसा लेना पड़ेगा, 100 से 500 तक हमने 5 देखे थे स्पर्धक, अनुभाग 500 हुआ ना, तो ये 500 मैक्सिमम अनुभाग वाला वहां एक परमाणु था, परंतु फिर भी हमने उसको वो स्पर्धक जो कुछ है स्थान बता दिया। अभी यहाँ 500 से 5000 हुआ मानते हैं, तो 500 से 5000 हुआ तो कितना अंतर हो गया, 4500 अंतर हो गया ना, या वो कितने गुना गुना करना। अभी इसको हाँ, ये पहले वाला 100 ही बढ़ाएंगे हम, 500 से 600 700 800 900 इस तरह से बढ़ेगा, छोटी संख्या ले लो तो समझ में आवे। हाँ उसको स्पर्धा, उसी को स्पर्धक है, एक परमाणु में जितना अनुभाग बढ़ रहा है उसी को यहाँ स्पर्धक संज्ञा दे दी, क्योंकि यहाँ जब हम 500 अनुभाग कहते हैं तो यहाँ के स्पर्धक के अंतिम वर्गणा का एक परमाणु उसमें 500 अनुभाग था, तो वो पहले से जैसे 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, तो इतने स्पर्धक बढ़े कहेंगे हम उसको, ऊपर इतने स्पर्धक बढ़े। अब कहते एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण, अभी मान लेते हैं ऊपर 10 स्पर्धक बढ़े, 10 स्पर्धक बढ़ेंगे तो क्या होगा, 100-100 बढ़ेंगे ना हर बार, तो 600-700-800 वो 1500 तक बढ़ेंगे, तो ये उसका अंतर कितना होगा, स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है। यानी उसमें कितना अंतर हो जाएगा, तो 900 का अंतर पड़ेगा अगर हम क्रम से बढ़ाएंगे, 10 स्पर्धक बढ़ाएंगे यहाँ, 500 से 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, इस तरह से क्रम से बढ़ाओ। अंतर है ना, दोनों का डिफरेंस है, तो उसको अंतर के बाद ये ने, ये 1500 होते हैं, तो 1500 और 500 माइनस किए तो 1000 हो गए ना। तो कितने बार वो स्पर्धक बढ़े ना, 600, 700, 800, 900, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वो तो 600 से, 600 से लेना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, कितने 11 हो गए। उसमें से एक कम करना, नहीं 10 बढ़े, 10 हो गए ना। हाँ, 1500 से, 1500 में से 500 माइनस करना, हाँ एक कम करना और एक, हाँ तभी अंतर होता है, और एक कम करना 500 को भी, एक कम स्पर्धक को। चिरानुभाग ने यहाँ 100 वाला लिया, मिनिमम पॉसिबल, वो 500 से ऊपर 100-100 से वृद्धि हो जाएगी। अंतिम स्थान था 500 वाला, हमने देखा पहला तो 100 था और उसका 500 मैक्सिमम था, यहाँ 5 स्पर्धक थे अभी, और दूसरा स्थान में जो स्पर्धक कितने बढ़ेंगे, तो 600, 700, 800, 900, 1000 ऐसे करके 1500 तक हो गए। नहीं नहीं, ये तो जितना नंबर ऑफ स्पर्धक है 100-100 से बढ़ता है, जघन्य अनुभाग जितना है ना, जघन्य पहली वर्गणा में जितना अनुभाग था उसको चिर अनुभाग कहा। तो आगे भी एक स्पर्धक बढ़ा का अर्थ होता है, ये 100-100 से गुणा करेंगे, ये 5 गुना था तो 6 गुना हुआ 100, 7 गुना हुआ, 8 गुना हुआ, 9 गुना, इस तरह से। तो जितना अंतर है ना, एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है। यानी इनका अंतर कितना हुआ, यहाँ 1500 माइनस 500 किए हमने, और उसमें से और एक कम करना, एक्चुअली हाँ स्पर्धक का प्रमाण करना है, तो उसमें स्पर्धक शाला का भी लेना ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार हुए वृद्धि। हाँ, ये 5, 50, 15 को हम एक कहेंगे, 50 को 500, सॉरी 500 को एक कहेंगे, तो 600 वाला है एक वृद्धि हुई, तो इसको भी नहीं, यहाँ एक वृद्धि 600 में हुई, दो वृद्धि 700 में हुई, तीन वृद्धि 800 में हुई, इस तरह से गिनना इसको। हाँ 10 दफे हुए, तो एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और उपरिम वर्गणाओं का अंतर होता है। नीचे के और ऊपर के वर्गणाओं का अंतर कितना है, हाँ तो उसके इतने स्पर्धक हैं, वो स्पर्धक की वर्गणाएं कहेंगे, तो एक एक के डिफरेंस से अनुभाग कहेंगे हम। पुनः द्वितीय स्पर्धक को ग्रहण कर प्रक्षेप सूत्र प्रथम स्पर्धक को प्रतिराशि करके उसमें मिलाने पर द्वितीय स्पर्धक होता है। अभी 500 का 600 हुआ था, उसमें और एक वो प्रक्षेप 100 का मिलाना, तो 700 हो जाएंगे, फिर 800 हो जाएंगे। एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का अंतर होती है। एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही वृद्धि उपरिम और अधस्तन स्पर्धकों की जघन्य एवं उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होती है। ये 500 और 600 में जितनी वर्गणा है ना, उसका उतना उसका अंतर हो जाएगा, दोनों में अंतर, यही बात बताना चाहते हैं ना। नीचे की वर्गणा और ऊपर की वर्गणा, उसमें अंतर कितना है उसकी बात बता रहे हैं। चय नहीं कहते उसको, देखो फिर पढ़ते। एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन
स्पर्धक
उसके बीच में अंतर कितना है, हम हमेशा देखते ना, अभी 100-100 देखा तो पूरे 100 वर्गणाएं नहीं होते हैं, अनुभाग 100 से शुरू किया था, मान लेते 40 अनुभाग तक एक एक से बढ़ गया, फिर डायरेक्ट एकदम 200 पर गया, तो बीच में जो नहीं था 40 से ऊपर और 200 से नीचे, इतना अंतर पड़ा था स्पर्धकों में। हाँ, 200 माइनस 40 माइनस 1 और करेंगे, वो बीच वाला अंतर पड़ेगा, तब जाके आगे वाला स्पर्धक उत्पन्न होगा। वर्गणा तो पूरी नहीं होती है, एक स्पर्धक में कंटिन्यूअस वर्गणा नहीं है, अनुभाग तो एकदम जंप करता है ना थोड़ी वर्गणा होने पर। परमाणुओं की निषेक रचना हमने देखी थी, परमाणुओं की प्रदेश रचना, तो उसमें तो कंटिन्यूअस लिया था, एक एक चे घटता हुआ परमाणुओं की संख्या में, परंतु अनुभाग वृद्धि होती है नीचे से ऊपर, एक बढ़ गया अनुभाग, एक अभिभाग प्रतिच्छेद, 2, 3, 4, 5, तभी तो उसको हम वर्गणा कहते हैं। बढ़ते बढ़ते वो रुक जाएगा और फिर 100 से 200 हो जाता है एकदम, तो हम कहते दूसरा स्पर्धक शुरू हुआ, तो बीच में अंतर पड़ गया। हमने यहाँ जो टेबल देखा था, ये टेबल निकालना अपना, पेज नंबर 99 पर देखो, 8 से लेकर 11 तक की वर्गा अलग अलग अनुभाग वाले जघन्य वर्गणा, वो 8 थी, वर्गणा भी कहेंगे तो वर्गों की बात है, परमाणु में ही कितना अनुभाग है। फिर दूसरी वर्गणा में 9 हुआ, तीसरी में 10 हुआ, चौथे में 11 हुआ, उसके बाद दूसरा स्पर्धक 16 से शुरू होता है, तो बीच में 12, 13, 14, 15 ये गैप हो गया, क्या किया हमने वहाँ 16 में से 11 माइनस कर दिए और 5 में से और एक माइनस कर दिया, तो 4 वहाँ का अंतर हुआ, ये बीच वाला अंतर। तो पहले वाली जघन्य 11 थी और अब पहले वाली उत्कृष्ट 11 थी और अभी की जघन्य 16 है, उसमें अंतर कितना है, 4 का है। यही बात यहाँ उपरिम और अधस्तन में यही बात बताना चाहते हैं, कितना अंतर है। तो हम 119 पृष्ठ पर पहली लाइन के अंत में आए, एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही वृद्धि उपरिम और अधस्तन स्पर्धकों की जघन्य एवं उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होती है, उपरिम की जघन्य और अधस्तन की उत्कृष्ट, जो अभी हमने देखा था। हाँ, उसमें और एक कम कर दो। हाँ देखो, अभी तीसरी लाइन, तृतीय स्पर्धक को ग्रहण कर द्वितीय स्पर्धक को प्रतिराशि करके उसमें मिलाने पर तृतीय स्पर्धक होता है, उसमें क्या मिलाने पर, प्रक्षेप मिलाने पर चाहिए, तदीय फद्दयम गेतुन विदीय फद्दयम परिराशीय पक्षित्ते, अच्छा उसमें मिलाने पर तृतीय स्पर्धक होता है, एक कम वृद्धिंगत द्रव्य मूल राशि करके किसमें मिलाना है, उसको प्रतिराशि कहते हैं, बेसिक कुछ चाहिए ना जिसमें हमको मिलाना है। एक कम वृद्धिंगत द्रव्य दोनों स्पर्धकों का अंतर होता है, एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही जघन्य व उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होता है, जो अभी हमने देखा था, ऊपर के और नीचे का जो अनुभाग है उसमें माइनस करो और एक और कम कर दो। इस प्रकार विरलन राशि के चरम अंक के प्रति प्राप्त राशि को द्विचरम स्पर्धक में मिलाने पर द्वितीय स्थान और अंतिम स्पर्धक के उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, ऐसे हमने कितने 10 स्पर्धक बढ़े हमने, तो उसमें हर बार 100 100 100 100 मिलाना, तो तो ऐसे इस तरह से हमने अंतिम स्पर्धक कराई, उसी को अंतिम स्पर्धक भी कहा है और उसी को द्वितीय स्थान भी कहा है। उत्कृष्ट अनुभाग है ना, तो उत्कृष्ट अनुभाग तक ले गए, उत्कृष्ट अनुभाग को ही हमने स्थान कहा था, तो यह हमारा द्वितीय स्थान हो गया। यहां द्वितीय स्थान और उसका ही अंतिम स्पर्धक एक नहीं हो सकते, क्योंकि अंतिम अंक के प्रति प्राप्त वृद्धि से युगपत वृद्धिंगत होकर क्रमवृद्धि को प्राप्त यानी अनुभाग की वृद्धि को प्राधान्य पद में स्पर्धक स्वीकार किया गया है, तथा द्विचरम स्पर्धक के साथ अंतिम वृद्धि को स्थान स्वीकार किया गया है। वो कर्म परमाणु का जो उत्कृष्ट अनुभाग है उसी को हाँ द्वितीय अंतिम स्पर्धक वही होता है, परंतु तो उसमें कुछ डिफरेंस बताया उन्होंने। देखो अंतिम स्पर्धक कब कहा, द्विचरम स्पर्धिक में इतना मिलाया तो अंतिम स्पर्धक हुआ, उस अपेक्षा से अंतिम स्पर्धक कहा। और स्थान कैसे, सभी परमाणुओं में जो उत्कृष्ट अनुभाग वाला है उसको वहां पर स्थान कहा है। हाँ, स्पर्धक उसी को कहा अनुभाग के क्रम से बढ़ने पर, उसमें हर बार वो हमने देखा ना जगन्य में जगन्य अनुभाग था, उतनी क्रम से वृद्धि होने पर जो बनेगा तो उसको यहाँ स्पर्धक संज्ञा दी है। अनुभागों के अलग अलग परमाणुओं को यहाँ लेना ही नहीं है, अनुभागों की ही चर्चा चल रही है। अनुभागों में क्रमशः इतनी वृद्धि बताएंगे तो उसको वहां स्पर्धक कहा है। यानी हाँ, उससे ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमने अलग अलग परमाणुओं में उसको देखा था। अंतिम वर्गना, हाँ अंतिम स्थान उसको कहे, मैक्सिमम जिसमें अनुभाग पाया जाया ऐसा कोई परमाणु है उसको हम वहां स्थान कहेंगे। अभी स्पर्धक भी उसको कहेंगे, परंतु यहाँ पर जो थोड़ा क्या डिफरेंस है, हम उसको अंतिम स्पर्धक क्यों कह रहे हैं, द्वितीय स्पर्धक से वो इतना ज्यादा है इसलिए उसका नाम अंतिम स्पर्धक पड़ा। उसी अनुभाग की चर्चा चल रही है, परंतु अंतिम स्पर्धक जब कहेंगे तो अंतिम स्पर्धक स्पर्धकों की भाषा में कहना पड़ेगा, तो उसके पहले वाले स्पर्धक से इतना बढ़ गया तब हमने अंतिम स्पर्धक कहेंगे। और स्थान किसको कहा, सब में जो मैक्सिमम है उसको स्थान कहा, ये नाम का डिफरेंस है उसमें। शंका, यदि ऐसा है तो वृद्धि का प्रक्षेप करने पर स्पर्धक होता है, यह कथन कैसे घटित होगा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संयोग स्वरूप से पहले उत्पन्न हुए स्पर्धक की भी कथनचित उत्पत्ति स्वीकार की गई है। यानी ये तो कहने की वो तो बात है कि इतने प्रमाण में, इतने गुणित प्रमाण में वो जघन्य अनुभाग के साथ कंपेयर करेंगे तो उतने स्पर्धक उत्पन्न हुए ऐसा कहेंगे। हम काल की भाषा में बोलने तो इतना काल बांधा, इतनी स्थिति बंधी, तो इतनी स्थिति बंधी तो जघन्य के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कितनी होगी, उस तरह से यहां लेना अनुभाग के साथ। इस द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतरों से अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है, सब जीवों से अनंत गुणा है। हाँ, अनुभाग का अंतर हो गया ना वहां पर, पहले स्थान में हमने कैसे दिखा था कितने स्पर्धक है उसमें जितना अंतर था, अभी कितना बढ़ गया, वो अनंत गुणा बढ़ेगा, तो उसको हम स्पर्धकों का अंतर भी कहेंगे ना। यहाँ के लास्ट स्पर्धक से वो उसका कितना बढ़ गया लास्ट, तो गुणकार क्या है? वह सब जीवों से अनंत गुणा है। यथा अभो वे सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र, जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक शलाकाओं का जघन्य स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक होता है। क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने जो मान लिया था जघन्य स्थान 500 वाला माना था, तो 500 वाला माना था तो वहां की स्पर्धक शला का हमने 100 से शुरू किया था। तो स्पर्धक शला का जितनी है तो उतने वहां पर हमने उसको भाग देंगे स्पर्धक शला का। तो हमको हाँ, तो जघन्य स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक होता है। तो एक स्पर्धक की वैल्यू हमने मान लेते, अभी हमने 100 आ गई है? उसमें से एक कम करने पर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों का अंतर होता है। 5 हमने देखा तो उसमें से एक, तो अंतर कितना होगा? 500 और 100 में 4 का अंतर है ना, वो अंतर हो जाएगा। फिर द्वितीय स्थान की वृद्धि को वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से खंडित करने पर स्पर्धक होता है। उसमें से एक कम करने पर स्पर्धकों का अंतर होता है। जैसे हमने देखा था 500 से शुरू करके हमने 1500 तक गए थे, तो वहां का जो डिफरेंस है उसको लेना। जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक का द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर, यानी जघन्य स्थान संबंधी जितना स्पर्धक का प्रमाण था और द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक जो है उसमें भाग देने पर सब जीवों से अनंत गुणा गुणकार आता है। इसी प्रकार स्पर्धकों के अंतर का भी गुणकार सिद्ध करना चाहिए। स्पर्धक शला का है अनंत गुणी है। हाँ, किसमें अंतर? अंतर भी अनंत गुणा है। वो यानी एक वर्गणा वर्गणाओं में अंतर, हाँ वो समान रहेगा। हाँ, इसी प्रकार सूक्ष्म स्पर्धकों का अंतर का भी गुणकार उन्होंने बताया। मुझे ऐसा लगता है कि यहां 100 के मल्टीपल में थे, वहां 500 के मल्टीपल में हो जाएगी, पर वो चिरानुभाग के उतनी वृद्धि बताई उन्होंने। चिरानुभाग की वृद्धि बताई है ना, कौन सा प्राकृत में? हाँ, कहाँ पर आया? 118 में चिराण अनुभागम मुत्तुन अक्रमेण वड्डी दूण, अक्रम से चिरा अनुभाग को छोड़कर युगपत वृद्धि को प्राप्त होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त वृद्धि के, यानी चिरानुभाग को छोड़कर अकमेणे ने युगपत वृद्धि को वहां लिया और कमेन वड्डी दून, फिर कम वड्डिम उवगदान अनुभाग। देखो चिर अनुभाग को छोड़कर युगपत वृद्धि को प्राप्त होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धक पना पाया जाता है। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे ऐसा लगता है चिर अनुभाग था अभी, पहले तो पहले स्थान में 100-100 से बढ़ता था, तो अभी मैक्सिमम 500 हुआ, तो यहाँ का भी जघन्य जो हो है, कोई 500 ले लो या कोई विशिष्ट अनुभाग ले लो, तो वहां से उतनी उतनी वृद्धि होगी। नहीं यानी हमने 100-100 वहां भी बढ़ाए वैसे नहीं होते हुए, हम 500 के मान लेते, वहां का अनुभाग 500 था, वो 1000 हुआ, हाँ 1000 हुआ, ये कोई भी फिगर ले लो, और फिर वो 1000-1000 में बढ़ेगा, क्योंकि पहले में हमने 100-100 से बढ़ता था और अभी 1000-1000, हाँ उतना ज्यादा, हाँ और वहां वो 1000-1000 से बढ़ेगा तो उसका अंतर भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले में हमने 100 से 100-200 होने तक एक स्पर्धक देखा था, और उसमें मान लेते कि 40 वर्गणाएं थी और ऊपर 60 अंतर था, तो अभी वो 1000 से 2000 होने में उतने गुणा करो, 400 होगी और वो 600 हो जाएगी। हाँ स्पर्धक का पर स्थान स्थान के प्रति समान है कि नहीं वो ख्याल में नहीं आ रहा है अभी तक, पढ़ेंगे हम आगे, अभी क्लैरिटी कभी कभी क्या होता है आगे पढ़ते तो पीछे का जरा क्लियर हो जाता है, फिर देखेंगे हमेशा ऐसा होता है क्या करें, अभी कोई पढ़ाने वाले है नहीं ना इसलिए उसको वृद्धि स्पर्धक क्यों कहा, ये ऐसे लगता है। यहाँ लिखा ना जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक और द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक, वृद्धि स्पर्धक, वृद्धि शला का, ये शला का अलग है, स्पर्धक शला का अलग है, और वृद्धि स्पर्धक यानी वो स्पर्धक ही बड़ा हुआ है अभी, हो सकता है ये बात ख्याल में रखकर अभी हम अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है माथा अपट न उसमें है ना, ये फिर दोबारा यहाँ, हाँ ये दो हम ख्याल में लेते हैं, या तो उतनी 100-100 की वृद्धि होगी या वो स्पर्धक ही हमने वृद्धि वाला स्पर्धक लिया है यहाँ पर, उसकी बात नहीं है। हजार का 2000 होगा तो बीच में वर्गणाओ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, 40 से 400 हो जाएगी, स्पर्धक बड़ा हुआ ना, वृद्धि स्पर्धक, जैसे हमारे 100 से 200 तक हमने देखा था, 100 का 200 हो गया तो हमने दूसरा स्पर्धक शुरू किया, अब वहां हम 1000 से 2000 हुआ तो यहाँ हम 40 ही लेते थे वर्गणाएं और 60 का अंतर बताते थे, तो वहां कितना हो जाएगा 400 से 600, ये अंतर का डिफरेंस 400 वर्गणा होगी, तो इससे वो 10 गुना हो गई ना वो वर्गणाएं भी, और अंतर भी 10 गुना हो गया, ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी, उस एस्पेक्ट से विचार करके हम देख सकते हैं। यहाँ जो लिखा ना अभी 120 पेज पर सेकंड लाइन में देखो, इस हिसाब से अगर हम अर्थ करेंगे तो देखो, जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक का द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर, वहां का स्पर्धा हमने वो 100 से 200 वाला दे लिया था, उसका वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर सब जीवन से अनंत गुणा गुणकार आता है, इसी प्रकार स्पर्धकों के अंतर का भी गुणकार सिद्ध करना चाहिए, अंतर भी उतनी गुणा होता है, हाँ अंतर गुणा होता है तो स्पर्धक बड़ा होगा तो वह अंतर भी बड़ा होगा, ये बात, ये अंतर भी उतनी गुना हो जाता है। वो स्पर्धक शलाका हो जाएगी। हमने क्या वहां का मिनिमम 1000 लिया हमने, और 1000-1000 की वृद्धि होगी वहां पर। अब देखेंगे जो कुछ है। अभी आगे पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होने वाली है। देखो जैसे योग स्थान के बारे में पहले कितने कंफ्यूजन थे, बाद में बहुत सारे, कितनी बार पढ़ा तभी क्लैरिटी आ गई। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक के त्रिचरम समय से लेकर, क्योंकि वहां तो अनंत गुना अनुभाग बढ़ेगा, हम उल्टा आ रहे हैं ना नीचे, जो बंद स्थान है उन सभी के स्पर्धकों की रचना इसी प्रकार करना चाहिए। विशेष इतना है कि द्वितीय बंद स्थान से तृतीय बंद स्थान अनंत गुना है। द्वितीय बंद स्थान, स्थान को किसको समझना, जिसमें मैक्सिमम अनुभाग है, वो ऐसे परमाणुओं का अनुभाग, उसको कहेंगे वहां, उसकी वहां इतना अनुभाग, वो बंद स्थान कहेंगे हम। अभी सूक्ष्म सांप्रदाय के नीचे उल्टा आए हम तीसरे समय में, तो वहां बंध अनंत गुना है। तृतीय से चतुर्थ बंध स्थान अनंत गुना है। इस प्रकार अनंत गुणित श्रेणी से, श्रेणी यानी पंक्ति से, लाइन से, सूक्ष्म सांप्राय और अनिवृत्तिकरण क्षपक कालों में ले जाना चाहिए। ये एक एक समय में अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना नीचे उतरते हैं, तो कहाँ तक आना नीचे, सूक्ष्म सांप्राय के अंत से शुरू किया था और अनिवृत्तिकरण क्षपक कालों में। हाँ, पुनः इन बंध स्थानों में अधस्तन स्थान के अंतर से उपरिम स्थान का अंतर अनंत गुना है। दो दो स्थानों में अंतर कितना है, जैसे हमने पहले और दूसरे में कितना देखा, दूसरे और तीसरे में कितना है, इस तरह से। अब ये अनिवृत्तिकरण के नीचे वाला जो होगा उससे भी यहाँ का स्थान अनंत गुना, यानी ऊपर से नीचे वाला अनंत गुना समझना, उल्टा जा रहे ना हम। हाँ, तथा अधस्तन स्थान के स्पर्धकों के अंतर से भी उपरिम स्थान के स्पर्धकों का अंतर अनंत गुणा है। अभी जघन्य स्थान है ना, वो अधस्तन और उपरिम किस अपेक्षा से बताया, अनुभाग बढ़ने की अपेक्षा से, और हम उल्टा आ रहे सूक्ष्म सांप्राय से द्विचरम त्रिचरम चतुर्थ समय, अनुभाग की अपेक्षा बताना है तो अधस्तन किसको कहेंगे, ऊपर के समय वाले को, समय ऊपर का सूक्ष्म सांप्राय का, परंतु वो स्थान अधस्तन है। अधस्तन स्थान से उपरिम स्थान यानी अनुभाग की अपेक्षा कम अनुभाग वाले से ऊपर वाला अनुभाग, वो अनंत गुणा है। अनंत गुणा क्रम से चलेगा, बराबर। ये नीचे से चौथी लाइन फिर पढ़ती है। पुनः इन बंद स्थानों में अधस्तन स्थान के अंतर से उपरिम स्थान का अंतर अनंत गुणा है। अंतरों में भी चलेंगे तो वही अनंत गुणा होता चला जाता है। तथा अधस्तन स्थान के स्पर्धकों के अंतर से, एक तो स्थानों का अंतर लिया और स्पर्धकों का अंतर लिया, नीचे के स्पर्धकों के अंतर से उपरिम स्थान के स्पर्धकों का अंतर अनंत गुणा है, क्योंकि वह अनंत गुणित श्रेणी से वृद्धि को, वो वृ बराबर करना, प्राप्त हुआ है। अब आगे इतना थोड़ा ऐसा ख्याल में आया ना। हाँ, इसका अर्थ है वो तो उस, हाँ, अंतर में भी फर्क है, यानी उसकी जो स्पर्धक जो जघन्य वर्गणा है, उस स्थान की जघन्य वर्गणा, उसका प्रोपोर्शन हर जगह अलग अलग है। विशिष्ट स्थान की वो जघन्य वर्गणा कहलाएगी, वही बराबर अर्थ फिट होता है। अभी तक तो, अभी तो उसको हम प्रिज्यूम करेंगे। क्षपक की थी बात है ना, दसवें से हम नीचे नीचे आ रहे हैं, अनंत गुणा का डिफरेंस तो क्षपक में ही होता है, और बाद में और नीचे अभी संयम के अभिमुख वाली की बात करेंगे, नीचे नीचे वो उसका अनंत गुणा वाला डिफरेंस नहीं होगा, कुछ यथायोग्य होगा उसको बताएंगे। संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के, संयम का अभिमुख है पहले गुणा स्थान से सातवें में जाने वाला जीव, और उसका अंतिम समय, सर्व विशुद्ध अंतिम समय, और ज्ञानावरण की बात है बंद की, हाँ वहां भी ज्ञानावरण की बात चली, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय के अंत से शुरू किया था ना हमने, उसके ज्ञानावरण के जघन्य स्थिति बंद के योग्य असंख्यात लोकमात्र विशुद्धि स्थान है स के ऊपर बिंदी लगाना। क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों में मिनिमम बंध कब होता है, करण लब्धि के अंतिम समय में, ज्ञानावरण की बात चल रही है, कितना होता है वहां पर, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि बाद में उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे, ख्याल है ना। तो मिथ्या दृष्टियों में मिनिमम पॉसिबल कहां होता है, संगी पंचेंद्रियों में बात चल रही, एकेंद्रियों की बात यहां नहीं लेना। तो संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावरण के जघन्य स्थिति बंध के योग्य, ये स्थिति बंध को लिया है बीच में हो, अभी अनुभाग बंध की बात बाद में कहेंगे, हमने पहले स्थिति बंध और उसके योग्य स्थान ऐसे अलग अलग देखे। तो वहां की जघन्य स्थिति बंध के योग्य असंख्यात लोकमात्र विशुद्धि स्थान है, उसमें हमने अनुकृष्टि रचना दिखाई थी, दूसरे समय वाला स्थिति बंध है उसके साथ भी उसके अपने योग्य थोड़े ज्यादा स्थान होते हैं ऐसा हमने देखा था, और वो असंख्यात लोक में भी शर्षान वृद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान देखे थे, ये जरा याद कराने के लिए। आगे लिखा है, अच्छा मैंने अभी पढ़ा कि फिर उनमें असंख्यात लोक मात्र उत्तर कारणों की सहायता युक्त उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान असंख्यात लोक मात्र है। उसमें क्या कहते, देखो असंख्यात लोक मात्र स्थान है ना, किसके, स्थिति बंध के, जघन्य स्थिति बंध के, ये आपके इसमें आता है, ये सारा भाव परावर्तन में, ये जघन्य स्थिति बांधी किसी जीव ने, वो स्थिति बंध इतना करने के लिए अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, उनकी संख्या कितनी है, असंख्यात लोक, उसमें भी असंख्यात स्थान की वृद्धि वगैरह वो सब समझना, असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि के स्थान है। हाँ इतनी, इतने परिणाम है, अलग अलग है उनमें, किसमें, दोनों में, अभी अनुभाग की चर्चा नहीं है, आगे आने वाला है तब अभी समझाएंगे, अभी तो क्या है, एक स्थिति बंध है उसके असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि के स्थान, अभी फिर उनमें असंख्यात लोक मात्र उत्तर कारणों की सहायता युक्त उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान असंख्यात लोक मात्र है। ये अंतिम विशुद्धि द्वारा, ये इसके भी जो कारण युक्त जो है, इसके भी अनुभाग के स्थान असंख्यात लोक, उससे भी असंख्यात गुणे, स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम हमने देखो विशुद्धि के स्थान, और विशुद्धि के एक एक स्थानों के लिए, एक एक स्थान के लिए असंख्यात लोक मात्र वो अनुभाग के बंध योग्य कारणभूत परिणाम होते, कारणभूत परिणाम में लेना उसको, तो वो भी असंख्यात लोक। वहां असंख्यात लोक मात्र श्रेष्ठ स्थान होते हैं, यानी स्थिति बंध के कारणभूत वो स्थिति बंध अधिवसान स्थान कहे, और उस एक एक के स्थिति बंध अधिवसान में हो तो असंख्यात प्रमाण वो अनुभाग बंध अधिवसान स्थान कहे जाने वाले। तो यहां कहते हैं षट स्थान किसे कहते हैं, ये तो हमने पहले भी देखा था, फिर दोबारा आता है यहां समाधान, जहां पर अनंत भाग वृद्धि स्थान कांडक प्रमाण जाकर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि ओवरु बराबर करना होती है। क्या कहते हैं कांडक किसको कहना, मंजू बेन आपको पता है, आप बीच बीच में नहीं आती ना कभी, देखो हमने क्या, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि किसको कहता है, विशिष्ट अनंत से भाग देने पर जो संख्या आएगी वो मूल संख्या में मिला देना, इतनी जब वृद्धि होती है तब हम कहेंगे उसको अनंत भाग वृद्धि, फिर अनंत से भाग दो जो संख्या है उसमें मूल में और मिला दो तो तो वो अनंत भाग वृद्धि का दूसरा स्थान। इसी पद्धति से अनंत का भाग देना मिलाना, अनंत का भाग देना मिलाना करते 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 अनंत भाग वृद्धि कितने बार हुई, तो कहते सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार। तो सुच्चंगुल का असंख्यातवा भाग ये जो प्रमाण है उसको एक कांडक कहा। ये इतना लंबा चौड़ा बार बार कहना ये एक्सरसाइज है ना टंग के लिए समझने के लिए उतनी जरूरी है। तो कहते एक कांडक बार हो गए ना, अनंत भाग वृद्धि का एक कांडक हुआ ऐसा कहेंगे, फिर तो जाके असंख्यात भाग वृद्धि एक बार होगी, फिर दोबारा अनंत भाग वृद्धि का एक कांडक होगा तब असंख्यात भाग वृद्धि दो बार होगी, फिर अनंत भाग वृद्धि का कांडक और तीसरी बार होगा तो असंख्यात भाग वृद्धि तीसरी बार हुई। इसी क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि का एक कांडक होगा तब जाके फिर एक कांडक अनंत भाग वृद्धि का होने के पश्चात संख्यात भाग वृद्धि एक बार होगी। अब ये पूरा का पूरा झमेला फिर दोबारा रिपीट करो, तो संख्यात भाग वृद्धि दो बार, ऐसे संख्यात भाग वृद्धि का एक कांडक होगा तो संख्यात गुण बीच में वो अनंत भाग वृद्धि को समझ ही लेना। हाँ, तो संख्यात गुणा वृद्धि का पहला स्थान इस तरह से ही लेना है। तभी देखो इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पर समाधान है ना 120 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, जहां पर अनंत भाग वृद्धि स्थान कांडक प्रमाण जाकर। कांडक प्रमाण का अर्थ ख्याल में है, कांडक का प्रमाण कितना है अभी, सुच्चंगुल के असंख्यात भाग। इतने प्रमाण जाकर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर भी अनंत भाग वृद्धि के ही कांडक प्रमाण स्थान जाकर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस क्रम से कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धियों के बीतने पर फिर से कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धिया जाकर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। यानी अनंत असंख्यात भाग वृद्धि के एक कांडक होने पर इमीडिएट संख्यात भाग वृद्धि नहीं है। हमने कैसे कहा उ चार उ पांच, फिर उ चार और उ पांच, दो बार उ का अर्थ होता है एक कांडक प्रमाण। यहां कांडक को दो में बताया उन्होंने, उ का अर्थ होता है अनंत भाग वृद्धि। तो बीच में वो उ करके फिर चार किसे पांच हो जाएगा, उसी को यहां कहते हैं एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। पश्चात पूर्वोदिष्ट ने पूर्व में बताए हुए समस्त अधस्तन अधवान जाकर, जितना यह संख्यात भाग वृद्धि होने के लिए जितना सारा जरूरी था प्रोसेस प्रक्रिया पूरी, उतना फिर दोबारा सब होकर द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर से भी उतना मात्र ही अधवान जाकर तृतीय संख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार कांडक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धियों के बीतने पर, फिर क्या होता है, संख्यात भाग वृद्धि की उत्पत्ति के योग्य एक अन्य अधवान जाकर ओ, यानी संख्यात भाग वृद्धि के लिए हम उ जो वहां आगे संख्या है ना पांच आया था फिर छह आई थी, तो फिर वो बीच वाला वहां तक ले लेना और बाद में उसको सात नंबर करना। तो संख्यात भाग वृद्धि के लिए जितना पूरा था वहां तक जाना, संख्यात भाग वृद्धि नहीं करना, संख्यात गुण वृद्धि कर देना। देखो फिर दोबारा हम उ की भाषा में समझेंगे, उ का अर्थ होता है अनंत भाग वृद्धि, तो दो बार की उसका अर्थ एक कांडक हुआ तब जाके चार यानी असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर अनंत भाग वृद्धि के एक कांडक जाने पर फिर असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर एक कांडक जाएंगे फिर पांच हुआ वो पांच हो गए हाँ? दो यानी सुचंगुल के असंख्यात भाग बार, कांडक बताए ना दो का एक कांडक बताए ना, तो यहां दो ये चार भी दो बार हुआ तब एक बार पांच हुआ, परंतु बीच में वो ऊ दो बार ले ही लेना, डायरेक्ट चार चार पांच नहीं करना। अब ये पूरा ही इतना ही दो बार लिखेंगे तो पांच दो बार हो जाएगी। तो पांच दो बार होने के बाद फिर इतना सब लिखना और उसके बाद छह लिखना, यानी ये तीन कॉलम दो बार लिखना है, इसे तीन कॉलम, फिर और यहाँ पर तीन कॉलम, और अंतिम कॉलम में इतना लिख कर फिर छह लिखना। डायरेक्ट वो छह नहीं लिख सकते हैं, यानी इसे नौ कॉलम करने पड़ेंगे हमको। समय ज्ञान चंद्रिका में इसमें बहुत डिटेल में हमने लिया, ज्ञान मार्गण में पूरा टेबल है। फिर जितना हम हमारे लिए वो छह नंबर आने के लिए उतना ही दो बार पूरी लाइन लिखेंगे, नौ कॉलम वाली, तो छह दो बार हुआ तो पूरी लाइन लिख कर फिर अंत में सात लिखेंगे, फिर तीन लाइन का प्रोसेस, फिर तीन लाइन में लिखेंगे तो सात दो बार हुआ, तब जाके फिर उतनी ही लाइन नीचे लिख के फिर नौ लिखेंगे वहां पर, आठ आठ लिखेंगे, नौ नहीं, आठ ही आता है उसमें, नौ आता ही नहीं। तो ये कहते इतना इतना कांडक जाने पर, यानी बीच में वो अनंत भाग वृद्धि तो कंटिन्यूस चलती रहती है। देखो हम चौथी लाइन से पढ़ेंगे। इस प्रकार कांडक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धियों के बीतने पर संख्यात भाग वृद्धि के उत्पत्ति के योग्य एक अन्य अध्वान जाकर, यानी संख्यात भाग वृद्धि के लिए जितना पूरा झमेला था वो पूरा करके उसके बदले वहां संख्यात गुणा लिखना। एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है पश्चात फिर से आगे समस्त अधस्तन अध्वान जाकर, जितना हमने प्रक्रिया बताई उतनी पूरी जाने के पश्चात द्वितीय संख्यात गुण वृद्धि होती है। इस विधि से कांडक प्रमाण संख्यात गुण वृद्धियों के बीतने पर फिर से संख्यात गुण वृद्धि विषयक एक अन्य अध्वान जाकर, यानी संख्यात गुण वृद्धि के लिए जितना जरूरी था एक कांडक तो पूरा हुआ, फिर और एक बार हुआ और तब जाके आगे वाला असंख्यात गुण वृद्धि हुई। इसलिए वो सुचंगुल के असंख्यात में भाग बार तो होता ही, उसमें एक और ऐड करना पड़ता है तब आगे की वृद्धि होती है। इसलिए वन प्लस सुचंगुल के असंख्यात में भाग को हमने पांच बार लिया था। फिर अधस्तन समस्त अध्वान जाकर असंख्यात गुण वृद्धि का द्वितीय स्थान होता है। इस प्रकार कांडक प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धियों के बीतने पर इतना ही नहीं, फिर असंख्यात गुण वृद्धि विषयक एक अन्य अध्वान जाकर एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है, यह एक षट्स्थान है। ऐसे असंख्यात लोक मात्र षट्स्थान होते हैं, एक एक, हाँ वहां उसमें भी षट्स्थान थे ही थे, अभी नहीं लिखे परंतु पूर्व में बता चुके हैं, उसमें भी षट्स्थान तो थे ही थे, अभी उससे असंख्यात लोक गुणे हो जाएंगे। वहां तो थे ही, उससे भी इसका प्रमाण और ज्यादा है अनुभागों का, अनुभागों के जो स्थान है वो और अनंत गुणे, ये असंख्यात लोक गुणे हैं उसके। हमने देखा ना स्थिति बंध के योग्य जो स्थिति बंध अध्यवसान स्थान, और उस एक एक के साथ असंख्यात लोक मात्र इतने अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान। अब कहते हैं ये षट्स्थान वृद्धि क्या है उसको बताया उन्होंने, ये तो पहले भी हमारा बहुत बार हमने इस पर विचार किया था। पुनः उनमें ज्ञानावरणीय का सर्वजघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है, उनमें की बात चल रही है। संयम के अभिमुख वाला जो सर्व विशुद्ध है, उन जीवों में सर्वजघन्य अनुभाग स्थान जो है वो अनंत गुना बताया। किसके किससे ज्यादा है बोलो, किससे ज्यादा है, नहीं, देखो संयम के अभिमुख वाले जो है, जघन्य स्थिति बंध योग्य स्थान असंख्यात लोकमात्र विशुद्धि स्थान होता है वगैरह वगैरह, तो उसके पहले हमने किसको लिया था, वो क्षपक जो क्षपक नीचे उतरता आया था उसको लिया था। उसके साथ में नहीं नहीं सूक्ष्म सांप्रदाय से नीचे नीचे उतर कर आए थे ना, उनमें उनमें बात की है, उनमें ने मिथ्या दृष्टियों में संयम के अभिमुख वाले जीवों में उसकी बात चल रही है, उनमें शब्द डाला है ना, उनमें शर्तस्थानों में की बात चल रही है। पर अनंत गुणा किससे कहेंगे फिर, देखो ये मिथ्या दृष्टि के जो असंख्यात लोक प्रमाण षट्स्थान है उसकी बात है। ये हमने कौन सा जीव लिया, सर्वजघन्य वो जो अनुभाग सॉरी विशुद्धि वाला स्थिति बंध जो सर्वजघन्य मिथ्या दृष्टि जो संयम के अभिमुख, उसके विशुद्धि के स्थिति बंध के स्थान इतने हैं और उसके अनुभाग के स्थान इतने हैं, उन अनुभाग स्थानों में सर्वजघन्य स्थान उसकी बात है। और फिर क्योंकि आगे का वाक्य पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगी, देखो व्यक्ति की बात अभी सुनो ना, ये स्थितिबंध अध्यवस्थान के कारणभूत जो असंख्यात लोक प्रमाण बताए जिसमें षट्स्थान बुद्धि है, अब इन स्थानों में जो जघन्य है उसकी बात चल रही है। अभी जिस जघन्य स्थितिबंध के योग्य स्थानों में वो बात चल रही है, वहां पर जो मिनिमम पॉसिबल अनुभाग है देखो वो अनंत गुणा है, फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों में इन्हीं की बात की ना, जो हमने पहले वो जघन्य स्थितिबंध के साथ वाले जितने हैं उसके यथा योग्य जो है उन्हीं में इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों में ज्ञानावरणीय का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। एक पॉइंट एक विशिष्ट जघन्य स्थिति बंध के योग्य जो परिणाम है, उस विशुद्धि के योग्य जो अनुभाग स्थानों के बंध के अलग अलग परिणाम है, वहां जो मिनिमम अनुभाग है और मैक्सिमम अनुभाग है उसमें भी अनंत गुणा का डिफरेंस है, ये बता रहे। अब कहते हैं फिर अंतिम समयवर्ती उसी मिथ्या दृष्टि का जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधा जाने वाला अंतिम समयवर्ती उसी मिथ्या दृष्टि का जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधा जाने वाला जघन्य अनुभाग स्थान अनंत गुणा है। एक मिनट है, नहीं 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 उसमें उत्कृष्ट वाला पहले लिया, ये हमने देखा था ना, ये जघन्य स्थिति बंध, जघन्य स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक, असंख्यात लोक वाले जो विशुद्धि के परिणाम थे उसमें विशुद्धि उत्कृष्ट विशुद्धि के कारणभूत परिणाम वो असंख्यात लोक, इसके हर एक के अपना अपना अलग रेंज, ये इसके कारणभूत परिणाम है, ये इसके अपने कारणभूत, हर एक के अपने अपने, हम जघन्य और उत्कृष्ट का कहेंगे, बीच में जगह नहीं अपने को दिखाने के लिए। तो ये उत्कृष्ट वाले के उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा और जघन्य विशुद्धि के द्वारा, दोबारा एक विशिष्ट स्थिति बांधी, कितनी मिनिमम पॉसिबल बांधी, उसके लिए अलग अलग विशुद्धि के परिणाम हो सकते हैं, इसको हमने स्थिति बंध अध्यवसान स्थानों में लिया था, उस विशुद्धि में परिणाम कुछ जघन्य और कुछ उत्कृष्ट है, तो कितने है उसमें असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें जो उत्कृष्ट विशुद्धि वाला परिणाम है उसमें अनुभागों की रेंज असंख्यात लोक प्रमाण है, एक विशुद्ध उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग के स्थान है, हर एक के अपने अपने, क्योंकि विशुद्धि के जितने स्थान है उसके अपने अपने असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। यहाँ दो ही ले लिया, एक विशुद्ध उत्कृष्ट के साथ और जघन्य विशुद्धि के साथ वाले अनुभाग बंध स्थान। हाँ, एक स्थिति बंध के साथ विशुद्धि के उत्कृष्ट जघन्य है और उस एक विशुद्धि के साथ असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान, एक एक विशुद्धि के स्थान के साथ, विशुद्धि के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण और एक एक विशुद्धि स्थान के साथ असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग के स्थान। देखो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है तो 120 पृष्ठ पर संयम के अभिमुख जहाँ लिखा है ना, उसकी तीसरी लाइन में उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाला अनुभाग, उसके विशुद्धि स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक मात्र। अकेले उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा विशुद्धि जघन्य स्थिति बांधने के विशुद्धि के स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। उन असंख्यात लोक प्रमाण में से जो उत्कृष्ट विशुद्धि वाला स्थान है, उस विशुद्धि स्थान में अनुभाग के स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक है, जिसमें षट स्थान पड़ते हैं। अभी ये जो ये विशुद्धि के असंख्यात, इसमें तो है ही, परंतु ये इतने विशुद्धि के स्थान हमने देखे। स्थिति बंध एक समय वाला विशिष्ट किया था, जो एक समय वाला नहीं, एक विशिष्ट समय वाला, मिनिमम पॉसिबल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल विशुद्धि के स्थान कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। अब उसमें से टॉप मोस्ट विशुद्धि वाला लिया जीव, संयम के अभिमुख वालों में भी विशुद्धि कम ज्यादा है अलग अलग जीवों में, उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल विशुद्धि वाला जीव लिया, उस विशुद्धि के साथ अनुभाग बंध देखा, तो उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। स्थिति तो उतनी है, एक स्थिति के लिए विशुद्धि के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण और एक एक विशुद्धि के साथ अनुभाग के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण कहते दोनों जगह षट स्थान, समझ ही लेना। अब यहां पर हमने देखे उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जो अनुभाग स्थान है उससे, हाँ उससे अभी यहां आए, उनमें ज्ञानावरणी का सर्वजगन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। हाँ वो आगे से वहां पर डायरेक्ट उसी लाइन में आप वो एरो कर देना उसको, फिर से अंतिम विशुद्धि के साथ जितने अनुभाग स्थान थे, स्थिति बंध एक ही है, एक स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि के स्थान, ये विशुद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान में से हमने टॉप मोस्ट विशुद्धि वाला स्थान लिया, उसके कारणभूत ये अनुभाग बंध अस्थिव स्थान का हुआ। अभी उसमें अनुभाग बंध स्थान कितने हैं अलग अलग, तो उसमें जो टॉप मोस्ट है वो, और इसी में जघन्य अनुभाग वाला भी स्थान होगा इस रेंज में, तो उसमें तो षट स्थान वृद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हो गए। तो कहते हैं वो अनंत गुणा है, क्योंकि हम मिनिमम विशुद्धि के साथ अनुभाग मैक्सिमम है ना, विशुद्धि में ही रेंज हो गई, विशुद्धि सेम और अनुभागों की रेंज, उसमें ज्यादा अनुभाग और कम अनुभाग, वो कम अनुभाग। अभी ये जगह ये उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ इतने बांध देते, जघन्य विशुद्धि के साथ भी इतने बांधे, तो जघन्य विशुद्धि के सर्व जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में ज्ञानावरणीय का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान अनंत गुणा है। अब इसी में वो अनंत गुणा, उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जघन्य भी अनुभाग बंधेगा, उत्कृष्ट भी अनुभाग बंधेगा, जघन्य विशुद्धि के साथ भी जघन्य अनुभाग बंधेगा, उत्कृष्ट अनुभाग बंधेगा, तो उसको जघन्य से उत्कृष्ट वो अनंत गुणा। ये बात षट स्थान होती है वृद्धि, तो कितनी बार अनंत गुणा हो जाएगा ना, एक बार अनंत गुणा होता है तो एक बार षट स्थान वृद्धि होती है, ऐसे षट स्थान वृद्धि के भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान गए, तो जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणा तो होगा ही होगा।
तो
कौन से चार में? चार्ट में देखो, देखो फिर उनमें यहाँ हमने जो पहले संयम के अभिमुख उसके चार लाइन फिर पढ़ते, भले हम स्लो जाएंगे। षट्स्थान क्या होता है वो बीच का छोड़ देगी बाद में, अभी जब पढ़ते हैं तब, क्योंकि षट्स्थान में अभी मान मालूम हो गया। तो यहाँ कहते देखो, संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावरण के जघन्य स्थिति बंध के योग्य असंख्यात लोकमात्र विशुद्धि स्थान है, वो तो हमारे ख्याल में आ गए। फिर उनमें असंख्यात लोकमात्र उत्तर कारणों की सहायता युक्त उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान असंख्यात लोकमात्र है। ये उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जो बांधे जाने वाले असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग के स्थान है, बराबर। ये विशुद्धि का उत्कृष्ट स्थान और ये उसके साथ बांधे जाने वाले अनुभाग के उत्कृष्ट, ये असंख्यात लोक प्रमाण स्थान, उसमें षट्स्थान वृद्धि होती है, वो बीच वाला हम छोड़ देंगे। अब आगे, वहां असंख्यात लोक मात्र षट्स्थान होते हैं, उनमें ज्ञानावरणी की सर्वजघन्य अनुभाग बंधस्थान अनंत गुणा है। उनमें ज्ञानावरण का सर्वजघन्य अनुभाग बंधस्थान कौन सा? उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा जो बांधा था उसमें से बात चल रही, बराबर है ना? उसमें से जो जो जर रहे हैं वो अनंत गुणा है। अनंत गुणा काहे से? जो हम पूर्व में पढ़ चुके उससे। उत्कृष्ट जघन्य, उसको जघन्य कहा ना, ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट, तो उससे अनंत गुणा हो जाएगा। देखो फिर आपके प्रश्न का उत्तर अगले लाइन में है। फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानों में ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट अनुभाग बंधस्थान अनंत गुणा है। ये इससे जो जघन्य देखा था, उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जो जघन्य देखा था उससे उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जो उत्कृष्ट था अनुभाग, वो अनंत गुणा है, क्योंकि बीच में इतने षट्स्थान है। अब उसके आगे, फिर अंतिम समयवर्ती उसी मिथ्या दृष्टि का जघन्य विशुद्धि के साथ बांधा गया। अब ये नीचे का ट्रायंगल देखो, जघन्य विशुद्धि के साथ भी जघन्य से उत्कृष्ट तक बहुत अनुभाग स्थान बांधे, असंख्यात लोक स्थान बांधे, उसमें से जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाला जघन्य अनुभाग स्थान अनंत गुणा है। उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाला जो था उसकी जो रेंज थी, ये अनुभाग में उल्टा लेना ना, अप्रशस्त प्रकृतियां है ना, ये यहां दिखाने के लिए हमने ऊपर दिखाया, तो क्या है यहाँ उल्टा कहना था, इससे ये जघन्य अनुभाग था फिर ये उत्कृष्ट हुआ, ये यहाँ के अभी उल्टा बताएंगे, उत्कृष्टता की अपेक्षा ऐसा कहेंगे। उत्कृष्ट अनुभाग के साथ, उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जो जघन्य अनुभाग बांधा था उससे उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जो उत्कृष्ट अनुभाग बांधा वो अनंत गुणा है। अभी जघन्य विशुद्धि के साथ जो जघन्य अनुभाग बांधा वो उस उत्कृष्ट से अनंत गुणा है, और इसका उत्कृष्ट उससे अनंत गुणा है। ये उल्टा ले लेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी बढ़ती है। विशुद्धि तो ऊपर बढ़ रही है और यह अनुभाग का, अनुभाग के जो अनंत गुणा है वो नीचे की ओर दिखाना। हाँ, ये भाव परावर्तन क्रम से होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए। सब तो होते हैं, वो बात तो होती रहती है, परंतु क्रम से होंगे तब हम उसको काउंट करेंगे उस टाइम को। ये वाले ये स्थिति बंद है, ये पॉइंट है वो जघन्य स्थिति बंद। हाँ, अपूर्व करण के हमने नीचे आए ना, उल्टा पहले समय से लिया था, ये जो बात देख रहे हैं मिथ्या दृष्टि की है। ये समझ में आया? विशिष्ट मिनिमम पॉसिबल स्थिति बांधी थी। इसके पहले वाला पॉइंट हम कंपेयर कर रहे थे, जघन्य स्थिति बंध हमने सूक्ष्म साम्राज्य के अंतिम समय में लिया था, फिर उल्टे क्रम से नीचे नीचे आ गए। ऊपर विशुद्धि ज्यादा है तो अनुभाग कम बंधा था, नीचे विशुद्धि कम होती है ना तो हम उल्टा क्रम से आए। अभी वो तो संयत की बात हुई, उसके अभी हम मिथ्या दृष्टि को लिया, उसके बाद नेक्स्ट मिथ्या दृष्टि में भी अंतिम समय वाला जो अनिवृत्तिकरण है, मिनिमम पॉसिबल स्थिति बंध करने वाला जीव लिया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल परिणाम कितने हैं? तो असंख्यात लोक मात्र विशुद्धि के स्थान है, उतनी स्थिति बांधने वाले। उस असंख्यात लोक मात्र में हमने टॉप मोस्ट लिया, उत्कृष्ट विशुद्धि वाला, तो उत्कृष्ट विशुद्धि वाला जघन्य अनुभाग बांधेगा, तो उसको ऊपर रखा जघन्य को अनुभाग के, उसके भी षट स्थान वाले असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। और उसी उत्कृष्ट की विशुद्धि वाला जो उत्कृष्ट अनुभाग बनता है वो उससे अनंत गुणा है। अब ये सारे असंख्यात लोक प्रमाण जो विशुद्धि के स्थान थे उसमें से जघन्य वाला लिया, वो जघन्य वाला जो जघन्य अनुभाग बांधता है वो उस उत्कृष्ट से अनंत गुणा था, और ये जघन्य वाला जो उत्कृष्ट बांधेगा वो उससे अनंत गुणा है। ये विशुद्धि और अनुभाग ज्ञानावरण में तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, उल्टा प्रोपोर्शन। हाँ, जितनी विशुद्धि अधिक उतना अनुभाग कम, क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियों में हम उल्टा कहेंगे, यहां ज्ञानावरण की बात चल रही ना, इसलिए। देखो जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधा जाने वाला जघन्य अनुभाग स्थान अनंत गुणा है, फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। ये यहां तक तो हमने अर्थ देखा। फिर द्विचरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि, अभी वो करण लब्धि वाला अनिवृत्तिकरण वाला ही मिथ्या दृष्टि लिया, अंतिम समय वाला लिया था, अभी द्वि समय वाला लिया, द्विचरम समय वाला। उस मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। अभी वैसे ही फिगर यहां भी समझना, उसके अपने अपने विशुद्धि स्थान अलग हो गए, तो उसमें उत्कृष्ट वाला जो उत्कृष्ट विशुद्धि वाला है वो जघन्य अनुभाग बांधेगा, तो उसको पहले नंबर पर रखना। फिर भी हम भी जो अंतिम समय वाला जो था उससे भी इसका अनुभाग बंध वहां अनंत गुणा है, न के ऊपर बिंदी लगाना। फिर इसी विशुद्धि के असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान अनंत गुणा है। उत्कृष्ट उसी की उत्कृष्ट विशुद्धि, द्विचरम वाले की उत्कृष्ट विशुद्धि के ही असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि के स्थान है, उसमें उत्कृष्ट विशुद्धि ली, और उस उत्कृष्ट विशुद्धि के कारणभूत या उसी परिणामों से बनने वाले अनुभाग के स्थान है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें पहले स्थान पर जघन्य को रखा, उससे अनंत गुणे उत्कृष्ट अनुभाग स्थान। फिर उसी द्विचरम समय में जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी हमने उत्कृष्ट विशुद्धि लिया था, ये बीच वाले एक एक को काउंट करो तो समझ में आवे ऐसी बात है। तो आचार्य ने उपकार किया तो दो ही बात बताए, एक उत्कृष्ट और एक जघन्य। तो द्विचरम समय में जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। ये अभी हमने जो चार देखे थे, उत्कृष्ट के साथ जघन्य उत्कृष्ट और जघन्य विशुद्धि के साथ जघन्य उत्कृष्ट, वो एक दूसरे अनंत गुणा अनंत गुणा है। तो अनुकृष्टि हो सकती, उसकी बात नहीं करे अभी, यहाँ वो विषय भी नहीं लेना। नहीं, अनुकृष्टि उसमें स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में होती है, अभी यहाँ वैसी बात उन्होंने बताई नहीं है, उसके अपने अपने यथायोग्य परिणाम समझना। ये पुनरुक्त स्थानों की आप बात करते हैं, हाँ। वो तो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में तो होते हैं पुनरुक्त स्थान, क्योंकि अलग दूसरे समय वाली स्थिति है उसमें, ये जो यहाँ के विशुद्धि स्थान वाले तो ये नीचे वाली जी स्थिति बांध सकते, ऊपर वाली भी स्थिति बांध सकते, थोड़ा रिपीटेशन होगा उसमें, उसमें स्थितिबंध अध्यवसान स्थानों में अभी अनुभाग अनुभाग के अपने अपने वो अनंत वाले है, उसमें होता है कि नहीं पता नहीं, स्थितिबंध अध्यवसान स्थानों में तो होता है। देखो ये पांचवी लाइन में आए हम, इस प्रकार त्रिचरमादि समयों में, ये वही मिथ्या दृष्टि वो त्रिचरम समय वाला लिया, अनंत गुणित क्रम से अंत करना न हो गया, अंतर्मूर्त तक उतारना चाहिए। ये जघन्य से शुरुआत की थी और ये सब अजघन्य अनुत्कृष्ट ऐसे स्थान बताते जाएंगे, तो क्रम से कौन कौन से जीवों को लेना उसकी बात हो रही है। पुनः उससे आगे मिथ्या दृष्टि के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि परिणाम संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। ये मिथ्या दृष्टि का स्वस्थान परिणाम यानी वो करण लब्धि वाला नहीं लिया, स्वस्थान वाला लिया, हाँ उसको स्वस्थान का यानी ऑर्डिनरी लिया वो मिथ्या दृष्टि, संगी पंचमी मिथ्या दृष्टि लिया ऑर्डिनरी, स्वस्थान वाला लिया ना उत्कृष्ट विशुद्धि। ये उत्कृष्ट विशुद्धि वाला करण लब्धि वाला वो उसको छोड़कर अन्यत्र जो विशुद्धि प्रायग लब्धि में हो सकती है उसकी बात की थी, उस परिणाम संबंधी जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान ब के ऊपर बिंदी अनंत गुणा है। अब ये स्वस्थान के उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ जघन्य उत्कृष्ट लगाया, अब स्वस्थान के ही उसके ही स्वस्थान जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुणा है। इसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। ये तो ये फिगर हम ख्याल में ले लेंगे तो ख्याल में आती बात। इसके आगे अब ये संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि की बात की, उसके आगे सर्व विशुद्ध असंगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के अंतिम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। फिर उसके ही अंतिम समय में जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। और उसके ही असंख्यात स के ऊपर बिंदी असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुणा है। ये चरम समय में लिया। इस प्रकार द्विचरमादिक समयों में विशुद्धि के द्विचरम समय लेना, अनंत गुणित श्रेणी से अंतर्मुहूर्त तक उतारना चाहिए। फिर असंगी पंचेंद्रिय के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। विशुद्धि जो होगी अभी कोई देवगति वगैरह बांध रहा है तो उसकी उसके योग्य विशुद्धि ज्यादा, उसके ही असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। फिर उसके ही स्वस्थान जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बंद स्थान अनंत गुना है। उसके ही जघन्य विशुद्धि स्थान के असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों संबंधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान अनंत गुना है। बाकी कल करेंगे, ये क्रम से उतारेंगे नीचे चतुर इंद्रिय तीन्द्रिय वगैरह। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।